या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 469.
2nd of November, year 2000. My wife in Houston's Sugarland Jamaat Khana. Today is 2nd November, the birthday of Imam Sultan Muhammad Shah. 2nd November, 1877.
जाके पाचम जिस में खंगा इरातमा से तरजे पमिजार घर सर्वधायों बहु रंग होए सेने राज करे से धनी मारो हो जियो जी मौलाना हज़रत इमाम के सलवात पढ़ो ना आदमी जब बूढ़ा होता है बहुत सी कमजोरियां आ जाती हैं जिंदा रहो आज मैं कुछ दिल खोलना चाहता हूं और इसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा लेकिन पहले मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये हमारे गैलेक्सी का एक छोटा सा भाग है हम जिस मिल्की वे में हैं मेरी ये बातें कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट अच्छी तरह समझ सकेंगे फिर भी मैं जितना सिंपल बन सका मैं सिंपल बन के कहूंगा मिल्की वे यूनिवर्स को कहते हैं हम गुजराती में इसको ब्रह्मांड कहते हैं मिल्की वे उसके अंदर गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी के अंदर बहुत से सूरज हैं बहुत से चांद हैं बहुत से प्लैनेट हैं और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इस गैलेक्सी के अंदर 32 सोलर सिस्टम हैं जिसमें एक ये हमारा है तो मैं इस सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं कि जिसके लिए हमें पीरों ने बहुत सी बातें कही हैं इस्लामी मजहब की हिस्ट्री और खास तौर पर मौला के नूर की जो दुनिया के अंदर हस्ती है वो जानने के लिए हमको पीरों ने ये बातें सिखाई हैं आमतौर पे ये किताबों में नहीं है लेकिन हमारे गिनान भरे हुए हैं इन चीजों से गिनानों के अंदर मैंने अपनी राजों में जिक्र किया है कि 24 भाषाएं 24 लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स हमारे पीरों ने यूज किए हैं गिनानों में अरबी है फारसी है उर्दू है पंजाबी है संस्कृत है मराठी है गुजराती है देवनागरी है पुश्तो है बलोची है ऐसी भाषाएं 24 इकट्ठी की इन 24 भाषाओं को कोई आदमी एक नहीं जानता लेकिन गिनानों को समझने समझाने के लिए जो हमारे बुजुर्ग और भगत थे उन्होंने बहुत सी चीजें हमारे सामने खुलासा कर दी एक छोटी सी बात बताने के लिए एग्जाम्पल देता हूं सतगुरु कह रहे उजड़ खेड़ा तो फिर वसे खेड़ा मराठी शब्द है और खेड़ा कहते हैं छोटे से गांव को। इस तरह हमारे पीराने गिनानों में एक शब्द यह भाषा का, दूसरा इस भाषा का, तीसरा इस लैंग्वेज का, इस तरह गिनान बनाए। और उसकी वजह यह थी कि गिनानों में जो छुपा हुआ इल्म है वो सबके हाथ में ना आवे। जिंदगी भर की मेरी जो गिनानों की स्टडी है, मैं अपनी आवाजों में थोड़ी थोड़ी जिक्र करता रहता हूं। और आज भी मेरे सामने ऐसे बहुत से यंगस्टर्स बैठे हुए हैं जिनको अपने मजहब की डीप स्टडी का कोई इल्म नहीं है। तो मोमिनो, हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, सूरज है, ये सबका राजा है। सूरज में से चांद निकला, यानी सूरज में से जमीन निकली, जमीन में से चांद निकला, सूरज में से और भी जितने प्लैनेट्स हैं वो निकले हैं। ये जो पैसिफिक ओशन है, इसमें से चांद निकला, इसके अंदर खुदा ताला ने दुनिया के अंदर इंसान जिस तरह आए ऐसे आए। हमारी ये जो जमीन है मोर देन 3 ट्रिलियन ईयर्स पुरानी है। 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। मोर देन 3 ट्रिलियन ईयर्स ये हमारी जमीन पुरानी है। और ये तमाम के तमाम प्लैनेट्स, सूरज को खांसी आई और उसके जोर से छोटा छोटा मवाद बाहर निकला और ये प्लैनेट्स बने। आप लोगों में से जो बच्चे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं या ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उन्हें इस बात का पता होना चाहिए, बल्कि होगा, कि 1 करोड़, 1 करोड़ का मतलब है 10 मिलियन, 996 मिलियन इस धरती को, सूरज के सारे सिस्टम को हुए, और उसमें से 96 मिलियन हमारी अर्थ से सूरज बड़ा है। 96 मिलियन टाइम्स सूरज हमारी धरती से बड़ा है और 996 मिलियन माइल्स दूर है। ये बातें मुझे आपको बतानी जरूरी हैं, इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको जहां लाना चाहता हूं समझाने के लिए, वहां आपको लाने के लिए अगर मैं ये नहीं कहूं तो समझना थोड़ा तकलीफ होगी। 1 करोड़ हमारी पृथ्वियां, हमारी जमीनें 1 करोड़ भेगी करो तो सूरज इतना बड़ा है। इसमें से ये सारा सिस्टम बना, सूरज खुदा ने अपने नूर से बनाया। अब हमारे पीर ने, खासतौर पर पीर सदरुद्दीन ने, ये सारा विस्तार दिया है, डिस्टेंस भी दिया है, टाइम भी दिया है, साइज भी बताया है। हमारे पीरों की औलाद में से पीर इमाम शाह जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी नकलन की गीता, ये फिजिक्स के ऊपर लिखी हुई है, यानी कि आसमान कितनी दूर है, चांद कितनी दूर है, चांद कितना बड़ा है, सूरज क्या है, ये सारे विस्तार इसके अंदर दिए हैं। और ये विस्तार देने की जरूरत क्या थी पीर को, मैं आज वही चीज बताना चाहता हूं और इसका एंड बहुत अच्छा है। खुदा ताला ने इस दुनिया के ऊपर, इस धरती के ऊपर इरादा किया कि मैं इंसान बनाऊं। इसके पहले और पुरानी चीजें हमको समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए कि भला ये चांद सूरज बनाने से पहले क्या था, उसका भी विस्तार हमारे ज्ञानों के अंदर मौजूद है। कंप्यूटर काम नहीं करता उसकी कैलकुलेशन करने के अंदर। तो मैं आपको बोलूं, ये जो जमीन है हमारी, इसके ऊपर बहुत टाइम गुजर चुका है, जैसे अभी कह रहा मैं कि मोर देन 3 ट्रिलियन ईयर्स हुए। हर 1 लाख बरस के बाद नई जमीन, सिविलाइजेशन, कल्चर, आबादी पॉपुलेशन हर लाख वर्ष के बाद शुरू होती है। एक लाख वर्ष जब इस जमीन को हो जाती है तो मैं एक मां का दाखला देता हूं, एक औरत का, कि एक औरत जवान होती है, फिर खुदा उसको औलाद देता है, 9 महीने बच्चा पेट में रखती है, फिर वो बच्चा बाहर आता है, उसको दूध पिलाती है, बच्चा जवान हो जाता है, खुदा उसके बदन के अंदर फिर इस किस्म की चीजें पैदा करता है, दूसरी साइकिल होती है, फिर उसको बच्चा होता है और बच्चा बड़ा होता है। इस तरह ये जमीन है, ये मां है, और धरती को माता कहते हैं हम लोग, मदर अर्थ कहते हैं। इस मां को हर एक लाख बरस के बाद बच्चा होता है, और एक लाख बरस के अंदर इसको रिलैक्स पीरियड भी मिलता है। ये जो एक लाख बरस की बाद उसका जो बच्चा होता है वो कोई एक इंसान नहीं होता, एक सिविलाइजेशन होती है, एक पॉपुलेशन होती है। उसमें भले एक बिलियन आदमी हो गए के 10 बिलियन हो गए, इस धरती के ऊपर पानी लहरें मारता था, हवा चलती थी, सूरज चमकता था, पानी और मिट्टी के मिक्स होने से और सूरज की गर्मी के साथ इसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा पैदा हुआ, एक जंतु पैदा हुआ, बैक्टीरिया पैदा हुआ, एक सिंगल सेल पैदा हुआ जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में स्पर्मेटोजा कहते हैं। इसके अंदर जीव था, ये जीव कहां से आया, उस पर परवरदिगार ने लगाया। हिकमत की बातें, छुपी हुई बातें, लफ्जों के अंदर लपेटी हुई बातें आम लोगों की समझ में स्टोरी के तौर पे हमारे पीरों ने और खुदा अल्लाह ताला ने फरमाया है, फरिश्तों को इकट्ठा किया। खुदा कहता है फरिश्तों, मेरा इरादा है मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाऊं। तो फरिश्तों ने कहा कि ऐ खुदाया, क्या हम तेरी नौकरी, तेरी इबादत, तेरी फरमान बरदारी नहीं करते? कहते ये बात नहीं, मेरा जो प्लान है तुम नहीं समझ सकते। अच्छा, तो खुदा ने जमीन में खलीफा भेजा। अब यहां आके दो रास्ते निकले हैं, मैं पहला रास्ता आपको बताना चाहता हूं। मेरी आज की वॉइस आम कॉमन वॉइस नहीं है, और इस वॉइस को समझना क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छा और जरूरी है। जब खुदा ताला ने ये चांद, सूरज, आसमान, सितारे और ये जो जमीन वगैरह बना डाली, तो उस वक्त जमीन के ऊपर कोई नहीं थे, फरिश्ते थे और कुछ जिन्नात खुदा ने पैदा किए, जिन। उनकी बस्ती तो बहुत बढ़ गई, उन्होंने शोर बकोर मचाया, फिसाद किया, नाफरमानियां की, तो खुदा ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज के उनका बहुत सा जो बदमाश थे उनका खात्मा किया, और बाकी जो जिन थे वो मुसलमान थे। मुसलमान का मतलब खुदा को मानने वाले थे। उसके बाद जब यह खलीफा की बात आई तो दुनिया के अंदर एक कीड़ा पैदा हुआ, उसमें खुदा ने जीव डाला, ये मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई होते 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 पानी के अंदर ही रहता था, डेवलप हुए, इससे बड़ी बड़ी मछलियां बन गई। जब मछलियां बन गई तो इनमें से ऐसे मछलियां भी जीती कि जो पानी के बगैर जिंदा न रहती थी, कुछ ऐसे थे कि वो और डेवलप होके जमीन में भी रहते थे, पानी में भी रहते थे, कि जैसे काछबा है, टॉर्टोइस, पानी में भी रहता है, जमीन में भी रहता है। इस तरह के और भी एम्फीबियस जो जानवर थे, यानी पानी में भी रह रहे, जमीन में भी रह रहे। फिर ऐसा होते होते ऐसा हुआ कि वो पानी में नहीं रहते थे, सिर्फ ड्राई जगह के ऊपर खुश्की पे रहते थे, घास फूस खाते थे, यानी जानवर बने। जानवर बनते बनते बंदर तक आए, बंदर के बाद चिंपांजी आए, और चिंपांजी की एक फीमेल चिंपांजी को जब भी बच्चा हुआ तो वो बच्चा बोलने लगा। साइंस इस चीज तक पहुंची है अभी कि एक बैंग को मानती है कि यकायक कुछ ऑल्टरेशन हो गया, या यकायक को ऐसी बैंग हुई तो ये बन गया, वो बन गया। लेकिन कमाल है हमारे पीरों ने ऐसे तरीके से हमें समझाया है। मैंने अपनी आंखों से एक देखा है, अफ्रीका के एक शहर में मैं वाज करने के लिए गया और किसी मामन के घर में मुझे दावत थी जो खाने के लिए गया, तो एक जवान लड़का जैसा सांकर से यानी चेन से बंधा हुआ था, मुझे लगा कि ये कोई बंदर है क्योंकि उसकी गर्दन नहीं थी, सिर कंधे के साथ ही लगा था। तो जो आदमी मुझे ले गया मुझे कहते मिशनरी सर, मैंने पहले नहीं कहा, ये मेरा बेटा है, छोटी सी उसकी इंच डेढ़ इंच जितनी पूछड़ी भी थी, और जब सामने से देखा तो हकीकत में बिल्कुल बंदर था और चेन से बांध के रखते थे उसको। 18 साल की उम्र तक वो जिया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में जब वो बहुत छोटा था तो अरीजा किया गया तो इमाम ने कहा उसका देख रेख रखो, ध्यान रखो बस। आखिर तो वो गुजर गया, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं वो बंदर ही था। ऐसा भी हुआ है कि खुदा ताला ने बहुत से वेजिटेशन और दुनिया की बहुत सी ऐसी चीजों के अंदर कुछ अजीब चीजें भी पैदा की हैं। मिसाल दूं आपको, अफ्रीका में नारियल बहुत होता है तो कभी कभी हमको नारियल तोड़ा तो अंदर दूसरा नारियल निकलता है। कभी कभी हमको अंडे में से दो योग तो निकलती है, मैं योग की बात नहीं करता, अंडे के अंदर दूसरा अंडा शेल के साथ। खुदा की कुदरतें बहुत बड़ी हैं। तो इस तरह से एक चिंपांजी फीमेल को एक बच्चा पैदा हुआ और वो थोड़े टाइम के बाद वो बच्चा बोलता था, ये पहला आदम था जो आदम दुनिया के अंदर हुआ, ये आदम इवॉल्व हुआ, उसको खुदा ने सेंस दी, अक्ल दी, समझ दी। लेकिन हम जिसको आदम सफीउल्लाह कहते हैं, नबी कहते हैं, वो ये नहीं, ये आदम अबुल बश्र इंसान का बाप, क्योंकि अभी भी और बहुत से दर्जे एवोल्यूशन के बाकी हैं। मगर वो आदम के जिसको हम नबी मानते हैं वो वीनस में से उतरा। नबी करीम की हदीसें पढ़ते पढ़ते और जिन्हान पढ़ते पढ़ते और इन तमाम चीजों के ऊपर और साइंस की किताबें पढ़ते पढ़ते जाके मुझे पता लगे हकीकत क्या है। तो नबी की हदीस में एक दिन मेरे हाथ में ऐसी हदीस आ गई और वो हदीस सही बुखारी में है, कॉमन किताब है, दुनिया में मिलती है जितनी चाहो। नबी करीम से पूछे, या नबी, हजरत जो आदम थे वो कहां से आए? हुजूर फरमाया हजरत आदम जन्नत में से नीचे फेंके गए। लफ्ज फेंकना है, भेजना नहीं है, किसी चीज को फेंकना और किसी चीज को भेजना और बात है। जन्नत से फेंके गए, गिराए गए। अच्छा या नबी, तो फिर वो कहां आए? हुजूर फरमाया जिद्दा में, जो अरबस्तान के अंदर है, सऊदी अरेबिया में सी पोर्ट है जिद्दा, जिद्दा में अम्मा हवा उतरी, बीबी हवा, और हजरत आदम जो थे वो सीलोन पे उतरे, सीलोन के पास, लंका के पास। 80 बरस के बाद फिर ये एक दूसरे को मिले, यानी लंका से पांव से गए होंगे अरबस्तान की तरफ, तो आदम अलैहिस्सलाम को वहां पहुंचते पहुंचते 80 बरस लगे। अब सवाल ये होता है कि फेंके गए, आज से 100-150 बरस पहले ये चीज समझ नहीं आती थी, लेकिन एटॉमिक एज के अंदर ये जो अब हम आसमान पे जाने की, चांद में उतरने की बातें कर रहे हैं तो अब हमें समझ में आती हैं। नबी फरमाया कि अम्मा हवा फेंकी गई तो इसी तरह से तो नहीं फेंकेंगे, इतनी फ्रिक्शन के अंदर वो मर जावे। लेकिन इस तरह का कैप्सूल था कि जिस तरह ये स्पेसशिप में जाते हैं और जब वो आते हैं तो कैप्सूल में उतरते थे, वो कैप्सूल किधर भी गिर जाता था। ये लोग वीनस में से कैप्सूल में यहां आए, अम्मा हवा आई, जिद्दा में उतरी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सीलोन के पास उतरे, और अब ये दोनों जब ही मिले तो अम्मा हवा ने 30 बच्चे जने। बाद जगह लिखा है कि 30
बेलड़े थे, बेलड़े यानी ट्विंस थे, तो 30 ट्विंस हो गए तो 60 बच्चे हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 2000 साल की थी, तो माँ बाप की भी उम्र लगभग इतनी होनी चाहिए। अब वो आदम जिसको मैंने आपको अभी समझाया है, जिसको हम अबुल बशर कहते हैं, कि जो जानवरों में से इवॉल्व होके बना, उस आदम की भी औलाद हुई, और ये आदम जो ऊपर से आए इनकी भी औलाद हुई। वो काले थे, ये गोरे थे जो ऊपर से आए हैं, इनके औलाद ने इनकी औलाद के साथ शादियां की। इस तरह दुनिया के अंदर इस धरती के ऊपर आबादी शुरू हुई। ये जो आबादी हुई, यहां से जो इवॉल्व होके इंसान बने, आदमी बने, इनके अंदर जानवर की खसलत थी, वैसे जीन्स थे कि जो बंदर चिंपांजी गोरिल्ला में से निकल के आए, पसार होके आए, तो वो जो जानवर की खसलत है वो इनके अंदर मौजूद रही, जो इंसानों में ट्रांसफर हुई। और नेकी की खसलत जो आसमान से उतरने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा थी, उनकी औलाद इन दोनों का मिक्सचर हुआ। अब मैं रोड पर आ गया हूं, ये चीजें मुझे समझाने की जरूरत थी। जब इनकी औलाद हुई तो आहिस्ते आहिस्ते इनकी औलाद जब बड़ी हुई, तो इनके अंदर ऐसे लोग भी थे कि जो लुच्चे बदमाश थे, नीच थे, ऐसे लोग भी थे कि जो बहुत अच्छे थे, इबादत करते थे। तो अच्छे और बुरे की मिक्सचर हो गया। जब भी कोई आदमी बहुत बुरा हो गया तो उनका भी कोई गैंगस्टर जिस तरह होते हैं, ऐसा एक सरदार बन गया। ये चीज जानवरों में आज भी है। आप कभी टीवी के प्रोग्राम नहीं देखते हो? मुझे वाइल्ड लाइफ का प्रोग्राम बहुत पसंद है, मैं देखता रहता हूँ। इसलिए देखता हूँ कि मेरे पीरों ने, मेरे मौलाना ने जो कुछ भी कहा है, या कुरान शरीफ के अंदर एवोल्यूशन की जो बातें आती हैं, उनको समझने के लिए मुझे बहुत काम आती है। वाइल्ड लाइफ की जो प्रोग्राम है, आप उनमें देखो कि हर जानवर के बच्चे लड़ते हैं, जानवर जानवर लड़ते हैं। जानवर की ये जो हसरत, लड़ाई, दंगा, फिसाद वगैरह है, ये चीज इंसानों के अंदर भी एवोल्यूशन की थियोरी के हिसाब से इवॉल्व होते आई। हमारे अंदर सांप की नेचर के लोग हैं। सांप की नेचर क्या है? कीना रखना, मार खा के चला जाएगा लेकिन मन में जहर रखेगा, जब भी मौका लगेगा डंक मार देगा। हमारे अंदर कुत्ते की नेचर है। कुत्ता अपने मालिक का बड़ा वफादार है लेकिन भाई का दुश्मन है। हर जानवर की खसलतें हमारे अंदर एवोल्यूशन के हिसाब से मौजूद है। इसलिए हमारे अंदर बदियां भी हैं, हमारे अंदर नेकियां भी हैं। नेकियों का मालिक मौला है, बदियों का मालिक शैतान है, जिसको हमारे पीरों ने दैंत का नाम दिया है। जिनानों के अंदर दैंत का मतलब बदमाशों, लुच्चों का सरदार। हर जमाने के अंदर दैंत रहा अपोजिशन करने के लिए, क्योंकि हर जमाने के अंदर हजरत इमाम का नूर मौजूद रहा। हजरत इमाम का नूर ऐसा नहीं है कि 2-5 हजार बरस के बाद हो रहे, ये वंश परंपरा चला आता है। आज हम हजरत इमाम को अली और नबी की औलाद में से मानते हैं, लेकिन अली नबी के ऊपर चले जाओ तो ये सब पात्र हैं। हमारे पीरों ने पात्र का जिक्र किया है, सितोत्र पात्र। आदम अलैहिस्सलाम से लेके वो आदम जो आदम सफीउल्लाह है, वीनस में से नीचे उतरे हैं, उन आदम को, आदम सफीउल्लाह को हमारे पीरों ने बुद्ध कहा है। इसमें एक और डीप चीज चली गई जो मैं आज टच नहीं करूंगा। तो ये जो वंशावली है हमारे मुर्तजा अली की और हमारे रसूल अकरम की, दोनों का, दोनों को जो बाप थे वो सगे भाई थे, और दोनों का दादा हजरत अबू अब्दुल मुतलिब जो थे, दोनों का एक ही दादा था। हजरत अब्दुल मुतलिब के जो बाप थे हजरत हाशम थे, हजरत हाशम के जो बाप थे वो हजरत अब्दुल मुनाफ थे। इस तरह ये सारी वंशावली हजरत आदम तक पहुंचती है वाया हजरत इब्राहिम। और इन तमाम के नाम हमारे पीरों ने हमें दिए हुए हैं।
इसको कहते हैं शीतोष्ण पात्र। पुरानी जब हम घटपाट की दुआ पढ़ा करते थे 22 पार्ट की दुआ है वो घटपाट की, उस दुआ के अंदर हम शीतोत्तर पात्र के नाम लिया करते थे और शीतोत्तर पात्र के बाद 48 इमामों के मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दत्ता का हम नाम लिया करते थे अपनी दुआ के अंदर। और अब तो वो चीज भी मिट गई, याद भी नहीं रहा, मोमिनों को मालूम भी नहीं कि शीतोत्तर पात्र क्या है, लेकिन आज भी हमारे पास वो छोटी सी किताबें मौजूद हैं। हमारे घरों में से वो चीजें आस्ते 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 खत्म हो गई, एक दो नस्ल और करीब 20-25 बरस निकल गए तो हमको तो गिनान का नाम भी याद नहीं होगा, और इसमें हमारा बहुत कसूर है। हमारे घरों के अंदर गिनान की किताबें नहीं रही, अफ्रीका में से और इंडिया पाकिस्तान में से और दूसरी जगह से बहुत से लोग आए, दरदागिने ले आए, गिनान की किताबें छोड़ आए। तो मोमिनों में आपको ये कह रहा था कि ये लुच्चे बदमाशों के अंदर जो गैंगस्टर्स होते थे, दईस उसको पीरों ने कहा है, वो ऐसे होते थे कि उस जमाने का जो नूर होता था, इमाम का अवतार होता था, उसके साथ उसकी लड़ाई होती थी। हालांकि दईस बड़े ताकत वाले होते थे, लश्कर भी बहुत होता था, फैसिलिटीज भी बहुत होती थी, और इधर देखो तो इमाम और इमाम के जो लश्कर होते थे वो बहुत छोटे होते थे, मगर हक हक है, नूर नूर है, और आखिर दईस बर्बाद होते थे। इस तरह दईस बर्बाद होते 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 इस जमीन के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा कि लाखों इस किस्म के दौर निकल चुके, लगभग हर एक लाख बरस के बाद ऐसा दौर आता है कि सिविलाइजेशन शुरू होती है, लोग आगे बढ़ते हैं, अकल वाले बढ़ते हैं, साइंस वाले बढ़ते हैं, यूं करते करते 10-1000 बरस के अंदर बहुत बड़ी तरक्की हो जाती है, और फिर मगरूर हो जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, गुनाह करते हैं, बुराइयां करते हैं, वो गैंगस्टर ताकत वाला बनता है, यूं करते करते फिर एक भयंकर लड़ाई होती है कि जिसके अंदर सारी दुनिया लगभग बर्बाद हो जाती है, और डिलीवरी हो गई, डिलीवरी हो गई से मेरा मतलब कि दईस मारा गया, नेकी का दुनिया के अंदर बोलबाला हुआ, उस जमाने के मोमन आराम और सुख की नींद सोते हैं, हजारों बरस निकल गए और आखिर फिर ये दौर शुरू होता है। इस तरह करते करते आज जिसमें हम हैं, ये दौर कलयुग का दौर 4,32,000 बरस लंबा है, और इस धरती के ऊपर जितने भी दौर आए सबका एक ही यूनिट है 4,32,000 बरस। फिर इस यूनिट को मल्टीप्लाई किया गया है। हमारे ये कलयुग से पहला जो द्वापर युग था वो 2 यूनिट का था, यानी 8,64,000 बरस का था। इसके पहले जो त्रेता युग था वो 3 यूनिट का था, यानी 12,96,000 बरस का था। इसके पहला जो था वो 4 यूनिट का था, सतयुग, उसमें 17,28,000 बरस थे। इसके पहले कलप थे, कलप से पहले करण थे। अभी कलप और युग, ये 4 युग, 4 युग के टोटल 43,20,000 बरस, यानी 4.320 यूनिट, इसके टोटल 10 यूनिट का बनता है। 43 लाख में से 7,000 बरस गए हैं ये कलयुग के, 7,200 बरस कलयुग चला गया है, 4,25,000 बरस कलयुग बाकी है। इस जमीन के अभी भी 4,25,000 बरस बाकी हैं, फिर ये जमीन जल जाएगी, राख हो जाएगी। कब राख होगी, किस तरह राख होगी, कितना टाइम लगेगा इसको बर्बाद होने में, हमारे गिनानों में है, जो आज मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं और जगह इसको किसी जगह बयान करूंगा। लेकिन मुझे जो कहना था वो ये है कि हर युग के अंदर, हर ये 4,32,000 बरस के दौर में ऐसा बनाव बनता है, बदियां बहुत पावरफुल हो जाती हैं, गुना ताकतवर हो जाते हैं, शैतान का जोर बढ़ जाता है, उस जमाने का जो दईस होता है वो बहुत काफर हो जाता है, और उस जमाने के मोमिनों को तंग करता है, अच्छे लोगों को हैरान करता है, अच्छे लोग दुखी होते हैं और फिर पुकार करते हैं, इबादतें करते हैं, तब जाके फिर वो जमाने का जो नूर होता है वो खड़ा होके इन तमाम बदियों बुराइयों का नाश करके सुख शांति फैला देता है। ये हर दौर के अंदर चला आया। इस तरह के इस जमीन के ऊपर हजारों दौर हो चुके हैं। एक आदमी आया मुर्तजा अली को, कहते या अली मैं आपसे एक सवाल करूं। फरमाया पूछ या अली, भला आदम से पहले क्या था? तो मौला फरमाया आदम। अच्छा मौला वो आदम से पहले क्या था? फरमाया आदम। तो जरा मुंझा गया। मौला आपसे कहते हैं तू मुझे 30,000 टाइम पूछे तो मैं तुमको यही कहूं कि आदम से पहले आदम, उसके पहले आदम, उसके पहले आदम, यानी कि 30,000 आदम इस दुनिया पे हुए। इसका मतलब कि 30,000 दौर हुए इस दुनिया के ऊपर, 30,000 एवोल्यूशन के पीरियड निकले इस जमीन पे। ये सारा विस्तार जो मैं आपको कह रहा हूं मैंने फिर सदरदीन से सीखा, और आज मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आपको न तो फुर्सत है डॉलर से कि आप किताब को हाथ लगाओ, ना आपको गाड़ियों से फुर्सत है, ना बंगलों से फुर्सत है। किसको शौक है सारी जमात के अंदर किताबें पढ़ने का? जिन अनकी किताबें हैं आज भी हैं, है किसी को यह दौर कि वो अपनी जिंदगी को अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमाम का गुलाम हूं और जमातों का नौकर हूं, मेरी जिंदगी इसमें गई। आज 69 ईयर्स मैं वाज करता हूं, मैं चाहता हूं ऐसा एक और भी निकले, एक नहीं 10-20 निकले। हमको आज बहुत जरूरत है ऐसे मिशनरियों की कि जो अपनी जिंदगी को दे दें। डॉलर के पीछे पढ़ने वालों में से कोई 10-20 निकलो कि जो इस तरह अपने इल्म की खिदमत कर सको। मैं भी मर जाऊंगा, अमीर भी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे, सब मरेंगे, मरता है ही, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि मजहब का फैलावा करो। आज वो दौर हमारे सामने आ रहा है, बदियां बुराइयां बढ़ रही हैं। पीरों ने हमें समझाने के लिए खासतौर पर ये चार युग के अंदर जो ऐसे 10 दौर आए, 10 रातें आई, रात का मतलब डार्कनेस, अंधेरा, मगर यहां ये सूरज चांद की बात नहीं, ये अंधेरा और डार्कनेस इल्म का और मजहब का, उसकी रोशनी के सामने बदमाशी, लुच्चाई, गुनाह और इग्नोरेंस डार्कनेस है, और डार्कनेस बढ़ती जाती है, डार्कनेस में रोशनी नहीं होती। आज दुनिया में गुनाह बढ़ रहे हैं, बदियां बढ़ रही हैं, ये डार्कनेस फैल रही है। इतनी डार्कनेस हो गई कि अब वो गिनान बोला उसमें, वो एक बच्चे ने इस सदरदीन का गिनान बोला, ऐसा जमाना आएगा बाप को बेटा मारेगा, सास पानी भरेगी, घर का काम करेगी और बहू आराम से बैठ के खाना खाएगी, 9 बरस की नारी फलेगी, 12 बरस का लड़का पैदा बाप बन जाएगा। ये सारी चितार पीरों ने हमें आज से 600-800 हजार बरस पहले कहे हैं और ये बनाव अब बन रहे हैं। बदियां बुराइयां और भी बढ़ेंगी। पीर ने एक और चीज कही है, पीर ने हमको परसेंटेज भी बताई कि दुनिया के अंदर कितने परसेंट अच्छे लोग होंगे। तो मैंने जब ये कैलकुलेट किया तो जमाना जब डार्केस्ट हो जाएगा, जिसको मैं 70-80 बरस और देता हूं, इस सेंचुरी के आखिर तक इस अदरदीन कहते हैं कि 2.5% मोमन होंगे, 97.5% क्राफर बदमाश दैत के लश्कर वाले होंगे। इस अदरदीन ने 2.5% इस तरह से नहीं कहा, उस वक्त अरिथमेटिक का जो हिसाब था वो 20 पे चलता था, तो इस हिसाब से भी सदरदीन ने लिखा कि 20 माथी अर्धो भाग मोमन हस है। तो कितने 2.5% हुए थे ना, 20 में से 5 दफा 20 गिनो तो 100 होते हैं, और 20 में से 0.5% रहो तो 2.5% हुए, तो 2.5% मोमन होंगे, 97 बाकी के 97.5 है वो कुफ्र होगा, डार्कनेस होगी, लुच्चाई बदमाशी होगी, एंटी रिलीजियस लोग होंगे, दैत के शागिर्द होंगे। जिस तरह हर जमाने के अंदर हमको पीरों ने ये कहा, दस अवतार की थियोरी यही है, ये थियोरी जो मैं आज आपको कह रहा हूं ये दस अवतार की थियोरी है। पढ़ते पढ़ते फारसी जबान में कहते हैं, थोड़ा पानी देता, फारसी जबान में कहते हैं कि जुइंदा या बिंदा, जो आदमी ढूंढता है उसको मिलता है। तो कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मुझे कुरान में से एक आयत मिली, अल्लाह ताला ने दस रातों का नाम दिया है, दस रातें, और अल्लाह कहता है कि अभी इस वक्त दसवीं रात है और अनकरीब रोशनी होने वाली है, नूर फैलने वाला है। मैं बहुत खुश हुआ, खुदा ने दस रातों का जिक्र किया है। मेरे हाथ में जितनी भी तफसीरें बन सकी मैं तमाम तफसीरों को पढ़ता रहा, ढूंढता रहा कि ये लोग तफसीर वाले ये दस रातों का क्या जिक्र करते हैं। किसी ने लिखा है रमजान महीने की आखिरी दस रातें, किसी ने ये लिखा है कि रमजान महीने की पहली दस रातें, मगर वो मकसद मिलता नहीं, बचता नहीं। पीसदीन का नाम लेके सजदा किया, क्योंकि पीसदीन ने ये दस रातों का जिक्र किया। जब दईद का जोर बहुत बढ़ जाता है, बदियां बुराइयों का जोर बहुत बढ़ जाता है, घिनान का नूर घट जाता है, नेकियां इबादत घट जाती है, तो इस दौर को रात कहा गया है। ये दौर फिर जब खत्म होता है, मौला दईद को मार डालता है, बदियां बुराइयों का नाश कर देता है, तो उसके बाद शांति, सुख, नूर, इबादत, नेकियां पैदा हो जाती हैं, और वो जमाना आने वाला है। अब वो जमाना बहुत दूर नहीं है। इस वक्त हम रात में से गुजर रहे हैं मोमिनों, ये रात है, और दईद का जोर बढ़ रहा है। कलयुग के दईद को सिर्फ शनाख्त कराने के लिए हमारे पीरों ने नाम दिया है कालिंगा। कालिंगा कहते हैं खराब दिल वाले को, काले दिल वाले को कालिंगा। आज का जो दईद है वो कालिंगा है, और कालिंगा का जोर बढ़ रहा है। बहुत चैन सितारे करेगा, मौजूदे करेगा। पीरों ने हमें वो चीजें कही हैं कि जो आज हम देख रहे हैं, लेकिन याद रखो किसी आदमी का, व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का नाम कालिंगा नहीं है। जिस तरह परवरदिगार एक फोर्स है, खुदा क्या है, खुदा ताकत है, एनर्जी है, ऐसा ही जो कालिंगा है उसकी भी एनर्जी है। क्योंकि उसके साथ शैतान लगा हुआ है, तो खुदा जितनी तो नहीं, लेकिन खुदा के सिवा बाकी सबसे ज्यादा एनर्जी शैतान की है। और आज मैं समझाने के लिए कहता हूं कि जो पावर ऑफ साइंस है ये दैत कालिंगा है। अब इसको यूज करने वाला जो है वो और होगा। आज मैं उस टॉपिक को नहीं छेड़ता हूं, क्योंकि मैं तुझे कहना चाहता हूं अभी दूर है। तो ये जो पीर ने जो कहा है कि दैत वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, पीर कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी को उड़ाएगा, घोड़ा गाड़ी को उड़ाएगा, पवन रथ घोड़ा, पवन में उड़ने वाले घोड़े के रथ। अभी हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो एरोप्लेन की पता है इंजन को हॉर्स पावर कितनी है, 2000 हॉर्स पावर का एक इंजन, चार इंजन हो गए तो 8000 हॉर्स पावर के इसके इंजन है, 747 जैसे 747 बोइंग। अब ख्याल करो 450 आदमी उठा रहे, 35-40 उसके अंदर क्रू हो गए, 400 आदमी का लगेज हो गए, 400 आदमियों का खाना हो गए, और उसके चार इंजन के लिए, हर इंजन के लिए 50,000 लीटर फ्यूल हो गए, 2,00,000 लीटर फ्यूल उठा गए। इतना वजनदार, जमीन से 8 मील ऊपर और 600 माइल की स्पीड से भाग रहा है। पीरों ने हमें 600 बरस, 800 बरस, ये 20 शमस का गिनाने 850 बरस हुए। विषमत ने सदरदीन ने पीएसएन कबीर जी ने अनंत खाड़ा पढ़ो तो सारा अनंत खाड़े के अंदर बड़ी डिटेल्स दी हुई हैं। मैं खाली एक डिटेल की बात करता हूँ। फिर माँ बाप कहते हैं पीएसएन कबीर जी कहते हैं जैसे कि मौला दैत का लिंगा के साथ लड़ेगा तो वो तो बड़ा पावरफुल होगा, इतना पावरफुल होगा कि दुनिया के लोग विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन उसको मारने के लिए कहते हैं कुदरती फोर्सेस काम करेंगी, नेचुरल फोर्सेस, ऊपर से बिजली गिरेगी, अर्थक्वेक आएंगे, एपिडेमिक होगी, फ्लड्स निकलेंगे, और साथ साथ ये कहते हैं उसके को लश्कर को मारने के लिए 64 करोड़ का मतलब है 64 मिलियन सांप निकलेंगे। मैं हंसना, मैं बोला यार प्लीज माँ बाप आप तो ये सारी इतने नंबर होंगे आप क्या गिनने गए थे? मैं फिर हसन कबीर दिल को कहा इमेजिनेशन में कह रहा हूँ 64 करोड़ यानी 64 तो 6 करोड़ 40 लाख होते हैं 640 मिलियन 64 करोड़ यानी 640 मिलियन सांप निकलेंगे कि जो उसके लश्कर को डस के मारेंगे। तो जब मैंने ऐसा कहा या फिर माँ बाप कि आप गिनने गए थे तो मैं ही अपने दिल में जवाब देता हूँ कि वो रूहानी मालिक नूर है, जमीन आसमान उसके नूर से बने, उसको कौन सी चीज का पता नहीं। बोला मुर्तजा अली एक दिन मिंबर पे बैठे वाज कर रहे थे मदीने की मस्जिद में, बोला कहते हैं कि मैं तुम्हारा इमाम हूं, हजार बरस के बाद कौन सा मोमन किस माँ के पेट से पैदा होगा मुझे पता है। तो हमारे पीरों ने जो कुछ भी एजाइज और क्वांटिटी वगैरह दी है वो सच्ची चीज है, इसलिए सच्ची है कि पीर जो है वो साइंटिस्ट नहीं है, वो नूरी हस्तियां हैं और उन्होंने जो कहा है वो सच्ची बात है। आज पवन रथ घोड़ा है ना, हम बैठते हैं ना, मैं वैंकूवर से आया इधर पवन रथ घोड़े में आया हूं। फिर कहते हैं कि दैत साइंस एनर्जी है ना, दैत मैं आपको समझा चुका हूं, ये जो गारा है गारा कीचड़ इसको मंत्रेगा, मंत्रने का मतलब ये है इस तरह से उसको डिवेलप करेगा कि वो गोड़ बन जाएगा। 12-14 बरस पहले शायद उससे भी ज्यादा मैं ये एक दफा कह चुका हूं शिकागो की अपनी किसी आवाज में, आप में से बहुत लोगों ने वो चीज सुनी नहीं, सारी आवाज रिपीट नहीं कर रहा लेकिन कुछ कह रहा हूं। आपको मालूम है ये जो तार है रोड के ऊपर डालते हैं, ये तार में से सिक्रीन निकलती है, डामर में से बिटुमिन में से सिक्रीन बनाती है, सिक्रीन मिठी है, वो लोग के जो डायबिटिक हैं वो सिक्रीन की एक छोटी सी गोली होती है मीठी, सारे कप को मीठा कर देती है। गारो मंत्री ने धैंत गोड़ बना उसे, पाणो मंत्री ने पोपट पढ़ा उसे, पाणो यानी एक शीट कागज का शीट, किरानुपुण रिकॉर्ड निकलते थे वो पोपट की तरह बोलते थे। ऐसे तो कितनी बातें हमारे पीरों ने फरमाई हुई हैं। तो पीरों ने ये दैत की पावर को हमारे सामने गिनानों में जिक्र किया है। दैत हमारी आंखों को कंपनी ने कंप्यूटर बुलाया, हम वो कंप्यूटर देखने गए, हैरान हो गए कि एक बहुत बड़ा 25 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा कमरा था जिसके अंदर कंप्यूटर था, एक कंप्यूटर। आज कंप्यूटर हमारे खीसे में आते हैं। मुझे याद है छोटी उम्र में वो ऐसा करके टेलीफोन रहता था और उसका वजह एयरफोन था, इधर लटकता रहता था, उसमें आदमी बोले हेलो इतनी जोर से बोले कि पड़ोस वाले सब सुनते होंगे क्यों क्या बोल रहा है। आज इतने से टेलीफोन है आपकी पाम से भी छोटे खीसे में पड़े हैं ट्रून ट्रून, कितने चेंजेस हो गए। वो जमाना था कि आदमी की आंखें खराब हो गई तो फिर बस अंधा हो गया, आज अंधों को सुजागा किया जाता है।
फिर उन्हें ज्ञान में लिखा कि दही कैसा करेगा कि मुर्दे को जीता करेगा, और आज मुर्दे जीता होते हैं, रिवाइव होते हैं, उसको आर्टिफिशियल जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को देते हैं, पंप करते हैं, दवाइयां देते हैं, मुर्दे जीते होते हैं। 10 बरस पहले रशिया में एक आदमी की इजाजत देख के उसको इमीडिएटली फ्रोज कर दिया। मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर जो व्यू है उसको निकाल के उसको रिवाइव करेंगे। 10 बरस पहले वो मर चुका है, जीता था, उसको इस तरह से इन्होंने किया कि विद इन फ्यू सेकेंड वो बिल्कुल फ्रोज हो गया। अब उसको थॉ करेंगे और उसको रिवाइव करेंगे ये स्टडी करने के लिए कि क्या इंसान को इस तरह से, जैसे खाने पीने की चीज है या ये हम गोश्त वगैरह प्रिजर्व कर लेते हैं, इंसान होता है और इसमें कोई नवाई नहीं कि उसको जीता करें और वापस बोलचाल करें। ये सारी चीजें हमको पीरों ने ज्ञान में इसलिए फरमाई तो देखो ऐसे ऐसे करिश्मे हैं, ऐसे ऐसे कर्तव्य होंगे, मगर तुम अपना दिल डोलाना नहीं और इमाम के साथ रहना, इमाम के फरमान पे रहना, क्योंकि यही सच्चा मालिक है। अब मैं आया हूं वापस, जो मुझे कहना था जिंदा रहो। 48वां जौमा पूरा हुआ, इसको आज 43 ईयर्स हो गए। 49वां 49th जौमा हमारे मालिक धनी का जारी है। हम लोग बड़े ही खुश नसीब हैं कि इस एटॉमिक एनर्जी के मालिक के जमाने के अंदर पैदा हुए हैं। आप लोगों को पता नहीं है, जो लोग थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं उन्हें मालूम है। मैं महज याद कराने के लिए आपको यह कहता हूं। आगे हमारा एक मेरा पुराना उसका बाप मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, वो सुल्तान ख्वाजा है, मालूम नहीं इधर बैठे कि नहीं। वो क्या रहे थे कि हम छोटे से गांव में रहते थे, हमारा हाल क्या था, छोटी सी कोठड़ी थी। सुल्तान भाई ये तो बात मामूली सी है, हमारे बाप दादा जो थे हसन अली शाह माँ बाप के जमाने के अंदर औरतें बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए नहीं निकलती थी कि शरीर ढांकने के लिए कपड़े नहीं थे, और कभी निकलना भी पड़े तो ये गुनी होती है ना, गनी बैग, ये लपेट के निकलती थी। एक ही कदाच कपड़ा होता था जमात खाने जाने के लिए काम आता था। हमारे पांव के अंदर जूते, हमारे पांव ने कभी जूते महसूस ही नहीं किए उस जमाने के अंदर। मौलाना असद अली शाह मौलाना अली शाह 1842 में जब इंडिया में आए और अब जमातों की हालत देखी, मौलाना रो पड़े। एक्चुअली जमात के अंदर मौलाना अली शाह मौलाना असद अली शाह रो पड़े कि ये हाल है मेरी जमात का, ये हमारा मालिक है, माता है, पिता है। पीरों के तुफैल से ये मजहब हमको मिला, पीरों की तुफैल से हमको मौला मिला, पीरों की तुफैल से मौला का आसरा मिला, पीरों की तुफैल से मौला ने हमें कबूल किया, पीरों की तुफैल से हम इसके आसरे के नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन लूले लंगड़े काने अंधे बहरे, बदली तौर पर लूले लंगड़े की बात नहीं करता, यानी हमको कुछ सूझता नहीं है तो अंधे हैं, हम सच्ची बात सुनते नहीं है तो बहरे हैं, हम मतलब को जानते नहीं, ज्ञान बोलते नहीं, इसके लिए हम गूंगे हैं, हम अच्छे रास्ते के ऊपर चलते नहीं है तो लंगड़े हैं, हम अच्छे काम करते नहीं है तो लूले हैं, हमारे हाथ काम नहीं करते। मैं रूहानी तौर पर कह रहा हूं कि हम लूले हैं, लंगड़े हैं, काने हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, क्योंकि हमारी जो रूहानियत है गिर गई है। और आज खास तौर पर हमारे मजहब के अंदर के जो हमारे भाई बहन हैं, जमाने के हिसाब के अंदर उनकी जो रोशनी बदियां बुराइयों की और दैंत कालिंगा के कर्तव्यों की जो रोशनी है, आज हम उसमें घिर गए हैं। हम लोग, हमको कुछ दिखता नहीं, लेकिन इमाम के छतर के नीचे बैठे हैं। मौलाना अली शाह माँ बाप ने एक फरमान फरमाया कि मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूं, मेरे पीछे मेरे मुरीद आ रहे हैं, अगर कोई मेरा मुरीद रस्ते के ऊपर गिरा हुआ पड़ा है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं नीचे नम के अपने उस बच्चे को उठाऊंगा, कलेजे से लगाऊंगा, साथ ले जाऊंगा, लेकिन अगर कोई मेरा मुरीद रास्ता छोड़ के बाहर खड़ा होगा तो मैं अपना रास्ता छोड़कर उसको लेने नहीं जाऊंगा। ये अलीशान बाप का फरमान है कि अगर मौला के आश्रय में पड़े रहे कैसे भी हैं, उसको शर्म आएगी कि मेरा तो है।
جیسے خدا نہ کرے کسی کے گھر کے اندر طرف لجک پیدا ہو جائے, جیسے ہم ریٹارڈڈ بچے بعض ہوتے ہیں, تو آخر وہ بھی تو پیٹ کا بچہ ہے نا, اس کو بھی دھیان رکھتے ہیں. اور ماں ایسے بیمار بچے کا زیادہ دھیان رکھتی ہے دوسروں سے. بالکل اسی طرح سے دینداروں ہم پکے نہیں ہیں, کچے ہیں, دستور ہماری برابر نہیں, عبادت ہماری برابر نہیں, ایمان کی ڈاما ڈول رہتا ہے بہت سو کا. اگر مذہب کے اوپر ہمیں تولا جائے تو ہم شاید 10% بھی اس میں پاس نہیں ہوتے. ابھی ایسی حالت کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہماری پیاری ماں اپنا سب کچھ چھوڑ کے, کام دھندا چھوڑ کے ہم کو کھانا دیتی ہے. یہ مولا ہے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ گھروں گھر گئے, برکت کا رستہ ڈھونڈنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پروردگار ہے, پیدا کرنے والا ہے, اور ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. لیکن پھر بھی فرعون کو مارنے کے لیے, سمجھانے کے لیے موسیٰ کو بھیجا. کیا خود اس کو ایک تھپڑ مار کے مار نہیں سکتا تھا؟ لیکن موسیٰ کو کہا جا فرعون کو سمجھا, ابراہیم کو کہا جا نمرود کو سمجھا. اس طرح سے ہر کافر ہر دیے, ابراہیم علیہ السلام وہ دئیت کے پاس گئے, موسیٰ علیہ السلام اس دئیت کے پاس گئے. دئیت کی ہزاروں شکلیں ہیں, لیکن زمانے کے حساب سے جس میں نے آپ کو کہا کہ 432,000 برس کے ایک یونٹ میں ایسا بنا رہتا ہے, بگڑ ہوتا رہتا ہوتا رہتا, رات بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی, پھر اس زمانے کا جو نور ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کے لشکر بھیگا کرتا ہے اور دئیت کا خاتمہ کرتا ہے. وہ وقت اب ہمارے نزدیک آ گیا ہے. 7,200 برس نکل گئے ہیں, یہ رات ابھی گہری ہو رہی ہے. بہت جلد, بہت جلد, یہاں جلدی سے مطلب کل 3 نومبر کو نہیں, آج 2 نومبر سلطان محمد شاہ کا جنم دن ہے. لیکن 100-150 برس کے اندر اندر دینداروں, 100-150 برس کے اندر اس دنیا میں بدیاں برائیاں مٹ جائیں گی. اور پیر کی ایک اور کمالیت کا آپ کو میں بیان کروں. پیر کہتے ہیں کہ جب مہدی علیہ السلام کھڑے ہو کے دنیا کے اندر بدیوں کو بالکل برباد کر کے, بدوں کو برباد کر کے جب یہ سلامت اور سکھ شانتی اور پیس اور سکون لے کے آئیں گے, تو اس وقت ساری دنیا کے اوپر آدھا بلین لوگ ہوں گے. آدھا بلین یعنی 500 کروڑ, سوری 500 ملین. 500 ملین کا مطلب 50 کروڑ لوگ دنیا میں ہوں گے. آج اس وقت 6 بلین ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اس وقت تک 20 بلین آدمی دنیا میں ہوں گے, 20 بلین. اور جب شانتی ہوگی تو 19.5 بلین برباد ہو چکے ہوں گے. اس گلوب کے بہت سے حصے برباد ہو چکے ہوں گے. میں آج نہیں کہنا چاہتا کہ کون سا حصہ رہے گا, کون سا برباد ہوگا, حالانکہ اس کے اشارے ہیں. جس طرح ہم کو امام گائیڈ کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. یہودیوں کو نیچے گرے ہوئے تھے, غریب تھے, چلو غریب ہونا برا نہیں, لیکن مار کھائے ہوئے تھے, ظلم کے اندر رہتے تھے. اور جو فرعون کا جو زمانہ تھا, اس زمانے کے اندر یہ یہودی جانوروں سے بھی زیادہ خراب حالت میں تھے. لیکن خدا تعالیٰ نے ان پہ رحم کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا کر کے, موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کے, موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈ کر کے یہودیوں کو ایجپٹ سے نکالا, اور ریڈ سی پار کر کے تو ادھر چلے گئے جس کو آج ہم پیلسٹائن کہتے ہیں. اس وقت اسرائیل پیلسٹائن کا ہی بھاگ تھا. یہودیوں کو خدا نے آہستہ 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 اوپر اٹھایا, بالدار بنایا, علم والا بنایا, سائنٹسٹ بنایا, اور ہر طرح سے ان کو ایسا کر دیا کہ سیولائزڈ ہو گئے. بالکل ایسا ہی حال خوجوں کے ساتھ ہوا, ہم خوجوں کے ساتھ ہوا. کچھ کچھ اوار کے اندر جو حال 4,000 سال پہلے یہودیوں کا تھا, ایسا حال ہمارا تھا. حسن علی شاہ ماں باپ نے علی شاہ ماں باپ کے ساتھ مل کے آہستہ آہستہ جماعت کو اوپر اٹھایا, اور قربان جمع مولانا سلطان محمد شاہ کے اوپر کہ جس نے اپنی 72 برس کی امامت کے اندر ہم کو شہزادہ بنا دیا. آج ہماری حالت دیکھو, ہمارے منہ دیکھو, ہمارے کپڑے دیکھو, ہمارے گھر دیکھو, اور آج سے لگ بھگ 150 برس پہلے ہمارے باپ دادا کا حال دیکھو. کس طرح سے مولا نے ہم کو ایمانسیپیٹ کیا ہے اور اس حالت کے اوپر رکھ کے اب یہ ہمارا فرض ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر ہم اپنے امام کی جماعت کی خدمت کریں, مدد کریں, اور ان دینتوں کی فورسز کے سامنے ہم کو کھڑا رہنا ہے. مولانا حضرت امام کو, مولانا سلطان محمد شاہ کو, مولانا علی شاہ کو, مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کو تمام چیزوں کا پتا تھا. وہ علم کے دھنی ہیں, آپ نور ہیں. ہم کو کس طرح سے اٹھا کے یہاں لایا؟ اے مومنوں, میں نے ایک واعظ میں لوگوں کو پوچھا, میں بولا آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کے اندر آج 1,00,000 کی جماعت اٹھا کے مولا لے آیا ہے؟ کوئی ایک بھید تو ہے نہ کچھ نہ کچھ. آج سے 40 برس پہلے یہاں ایک بھی اسماعیلی نہیں تھا, آج 1,00,000 اسماعیلی ہے. کوئی مقصد تو ہے نا اس کا. اب ایسے ماحول میں, ایسے ملک میں مولا ہم کو لے کے آیا ہے کہ جہاں گندگی بہت ہے, کرائم بہت ہے, گناہ بہت ہے, بے حیائی بہت ہے, ظلم بہت ہے, انیائے بہت ہے, ہونپنی بہت ہے, تمام قسم کی بدیوں برائیوں کے یہ گھر ہے. اور آج ساری دنیا کے اندر جو بدیاں پھیل رہی ہیں وہ امریکہ میں سے نکل کے پھیل رہی ہیں. یورپ ابھی بالکل لگ بھگ مر چکا ہے, یورپ کی ویلیو اب نہیں رہی, لیکن امریکہ آج پاورفل کنٹری ہے. اس ملک میں بہت خوبیاں ہیں, علم سیکھو, سائنس سیکھو, ٹیکنالوجی سیکھو, اور کئی قسم کے علم ہیں اس ملک کے اندر. مگر اس ملک کے اندر ساتھ ساتھ خرابیاں ہیں. پھول ہیں, کانٹے بھی ہیں. پھول کم ہیں, کانٹے زیادہ ہیں. ہمیں کانٹے سے کوئی مطلب نہیں. کبھی زخم لگ گیا تو سہن کر لو, لیکن پھول حاصل کرو, علم حاصل کرو, ٹیکنالوجی حاصل کرو, ایڈوانس بنو, آسمان تک پہنچو, تاکہ آنے والے زمانے میں جب اس زمانے کا امام آج سے 100 برس پہلے, کچھ برس پہلے, وہ جب بھی لڑائی کرے گا تو ہم کو مدد کرنی پڑے گی اپنی اسماعیلی فورسز کی. وہ گلوریس ٹائم جو ایجپٹ کا تھا ہمارا, وہ گلوریس ٹائم آ رہا ہے. اس امریکہ کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ بدیاں برائیاں گناہ بہت ہیں, لیکن ساتھ ساتھ دیکھو تو اس ملک کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں. دشمنوں کے ملک میں بھی, کسی بھی ملک میں جب بھی کوئی ایسا دھرتی کمپ آوے, یعنی ارتھ کویک آوے, یا کوئی اور اس قسم کی ایپیڈیمک نکلے, تو سب سے پہلے امریکہ دوائیاں بھیجتا ہے, کپڑے بھیجتا ہے, کھانا بھیجتا ہے, ڈاکٹر بھیجتا ہے, نرس بھیجتا ہے. امریکہ کے کام بہت اچھے ہیں. بدیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں, اچھائیاں بھی ہیں, نیکیاں بھی ہیں. تو ہم کو اس ملک کے اندر پھول چننے کے لیے بھیجا گیا, تاکہ ہم اپنے بچوں کو ہائر قسم کی ایجوکیشن سکھائیں, کہ ہم کو 100 برس کے بعد یہ ہائر ایجوکیشن والے ٹیکنیشین, سائنٹسٹ, انجینئر, ڈاکٹر, مولا کو دنیا میں کام کرنا ہے یا ادھر کام کریں گے. اس کے لیے آج ہمارے پاس ایسی بہت سے رستے مولا نے کھول دیے ہیں. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک کالج کھولی گئی. معاویہ کی سلطنت, بنی امیہ کی سلطنت بالکل مٹ چکی تھی مولانا امام جعفر صادق کے زمانے میں, مگر پھر بھی عباسی پیدا ہوئے, وہ بھی ہمارے دوست تو نہیں تھے, لیکن امام نے, مولانا جعفر صادق نے ایک کالج کھولا. مگر پھر ہم کو ادھر سے اپنی امامت اٹھا کے مولا کو سلمیہ جانا پڑا, اور ادھر پیچھے ہمارا جو کچھ بھی تھا وہ برباد ہو گیا. پھر وہاں سے نکل کے ایجپٹ میں گئے, ہماری حکومت ایجپٹ میں بنی. ایجپٹ میں ہمارے دائیوں نے, مشنریوں نے, عالموں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے, علم لکھا, مگر یہ ہمارے جو بہرے تھے مستی علیہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا. یہاں سے نکل کے حسن بن صبا نے جو آلمود بنا رکھا تھا اس کے اندر 200 برس وہاں ہم نے حکومت کی, اور وہاں جو کچھ بھی لکھا گیا, 600,000 کتابوں کی ہماری لائبریری تھی آلمود کے اندر. مگر جب وہ برباد ہو گئی تو ہمارے پیروں نے وہ سارا علم گنانوں کے روپ میں لکھا, اور اب وہ گنان ہمارے سامنے ہے کہ جس سے ہماری دوستی گھٹ گئی ہے. گنانوں سے واپس دوستی کرو, اس کے اندر دنیا بھی ہے, دین بھی ہے, آخرت بھی ہے. یہ دنیا کے سوا ہماری روحانی چیزیں بھی ہیں, اور جن داروں ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے حقیقت میں وہ روحانی مذہب ہے, اور روحانی مذہب ہونے کے ناطے ہمیں دنیا میں سے الگ ہونے کی بات نہیں ہے. دنیا بھی کماؤ, دین بھی کماؤ, حضر ایمان کی مدد کرو, اس کو مدد کی ضرورت نہیں, لیکن ہم کو لابھ دینا چاہتا ہے. ابھی تھوڑا ٹائم ہوا آئی آئی ایس نے جو یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے, کیمپین شروع کیا ہے آئی آئی ایس اپنے اسماعیلی مذہب کے علم کو پھیلانے کے لیے ہے. حضر ایمان کے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر یہاں ڈالر کماؤ, مولا کی دنیا بھانے مدد کرو, اپنے مات پتا کی بھی مدد کرو, جماعت کی مدد کرو, اور اس پیسے سے اپنے مذہب کو اوپر اٹھاؤ تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور دین ہمارا مضبوط ہوئے. سکھی اور آباد بنو, بلا نیک امیدیں پوری کرے, حقیقت سمجھ دے, بدیوں برائیوں سے بچائے, گناہوں سے بچائے, شیطان کے فریب سے بچائے, اپنے چھتر چھایا میں رکھے, اپنی نعمتیں دے دے, بخشیشیں دے دے, برکتیں دے دے, اچھائیاں دے دے, عبادت کا شوق دے دے, دست و سکرین میں پورا رکھے, گھروں اور جماعتوں میں اتفاق و محبت دے دے, آپ کی دین دنیا میں, آپ کی اولاد کی دین دنیا میں ترقی کرے, ہر نیک امید پوری کرے, ہر آفت و بلاؤں کو دور رکھے. شکریہ, بعد میں.